चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्दश्चैतगदाधर श्रीवासुदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे छह गोस्वामियों के संक्षिप्त में उनकी जीवन की जो कथाएं हैं, विशेष करके पिछली बार हमने आपसे षड् गोस्वामी अष्टक और छह गोस्वामी का जो गुणगान गाया गया है और नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा जो गुणगान गाया है, उन सबके संक्षिप्त में चर्चा की थी। क्योंकि ये छह गोस्वामी ही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा को हम तक पहुंचाने के सबसे बड़े प्रमुख साधन है या प्रमुख माध्यम है। चैतन्य महाप्रभु की सारी कृपा इन गोस्वामियों के पास है और इन गोस्वामियों का आचरण, उनका व्यवहार, उनका महाप्रभु के प्रति भक्ति इतना उच्च कोटि का है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको अपना निजी धन मानते थे और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष कृपा इन सब गोस्वामियों के पास है और महाप्रभु ने इनको अलग अलग कार्य के लिए उनको चुना। सो हम सोच रहे थे कि रूप गोस्वामी के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे आप सबके साथ और आगे फिर बाकी के पांच गोस्वामियों के विषय में, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब का हम चर्चा करेंगे एक एक करके। वैसे ये आचार्य ऐसे महान है क्योंकि गुणगान अनंत है, विशेष करके रूप गोस्वामी के विषय में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गौड़ीय भक्त जो है उन सबको रूपानुगा कहा जाता है। विशेष करके हम सब भक्त रूपानुगा, रूप के अनुगामी अर्थात रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलने वाले भक्त। अगर कोई व्यक्ति इन छह गोस्वामियों के द्वारा बताए गए सिद्धांत का अटल पालन करता है, स्ट्रिक्टली पालन करता है, तो संसार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी भक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि वो भक्त बाद में हिमालय की तरह स्ट्रांग हो जाता है अगर वो सिद्धांतों का पालन करता है। एक रूप से देखा जाए तो और किसी प्रकार की कोई योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है किसी भक्त को, ज्यादा अच्छा ज्ञान होना या ज्यादा त्याग होना या फिर अच्छा संगीत जानना, ये सब चीज वास्तव में गौण है। एक ही वस्तु मुख्य है, जो है भगवान के प्रति प्रेम और विशेष करके इन छह गोस्वामियों या वैष्णव आचार्य हमारे जो है उनके वचनों पर समर्पण और श्रद्धा। अगर ये निरंतर स्ट्रांगली हम इसको पालन करते हैं तो हम भी उन्हीं के अनुगामी भक्त के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। एक जगह एक लेटर में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि अगर तुम शुद्ध भक्त नहीं हो, लेकिन आज तुम शुद्ध भक्त नहीं हो, किंतु तुम शुद्ध भक्त के द्वारा बताए गए सभी आदेशों को, उनके शिक्षाओं को चुस्त रूप से पालन करते हो, तो आप भी शुद्ध भक्त ही माने जाएंगे। ऐसा प्रभुपाद है सेड इन वन ऑफ द लेटर्स। तो क्वालिफिकेशन इज सरेंडर फुल्ली, सब प्रकार से, मन वचन कर्म सब प्रकार से इन गोस्वामियों के चरणों में शरणागति लेना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब पूछा गया था, शायद आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब वो शरीर त्याग करने वाले थे तो उनके कुछ शिष्य ने उनको पूछा कि महाराज उनके साथ बैठे हुए थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इच्छा प्रस्तुत की कि वो अपने मृत सैया पर थे, बस प्राण त्याग करने वाले से कुछ समय में, और भक्तिदानंद सरस्वती ने कहा कि सब रूप श्री रूप मंजरी पद गाइए, क्योंकि रूप गोस्वामी वास्तव में हमारा सारा भक्ति, हम रूप गोस्वामी के सिद्धांत, उनके बताए गए शिक्षाओं के आधार पर चलते। रूप गोस्वामी ने वैष्णव साहित्य का वर्णन इतना सुंदर रूप से किया है, वैष्णव सिद्धांतों का वर्णन, कि आज तक ऐसा किसी व्यक्ति ने वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तावित इतने अच्छी तरह से कभी नहीं किया। और वो उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो कुछ काव्य बनाए हैं, ग्रंथ बनाए हैं, वो अनपैरेलल, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। इसका कारण ये भी है क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति संचारित किया था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये रूप गोस्वामी अपना सब कुछ मेरे चरणों में अर्पण करके सेवा देना चाहते हैं। तो जनरली भगवान का ये स्वभाव है, केवल रूप गोस्वामी ही नहीं, भगवान ये देखते हैं कि जो भक्त अपनी पूरी क्षमता से मेरी सेवा करना चाहता है और प्रयास कर रहा है, तो फिर भगवान उसको शक्ति देते हैं, उसको एम्पावर करते हैं। भगवान को किसी को एम्पावर करना, शक्ति देना, ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बट भगवान को क्वालिफाइड डिवोटी को ये शक्ति प्रदान करते हैं, और ये क्वालिफिकेशन क्या है कि वो पूर्ण रूप से परंपरा को फॉलो करे और अपनी सभी शक्तियों का, सभी क्षमता का पूरा उपयोग करे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। जब भगवान हमारी इस विनम्रता से, समर्पण से और गंभीर निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, तब फिर भगवान हमें शक्ति संचार करते हैं, और फिर हम ऐसे कार्य करते हैं, कर सकते हैं अगर भगवान की शक्ति संचारित होती है तो, कि जिस कार्य को साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, ये संभव हो सकता है हर एक वैष्णव के लिए, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन आवश्यक है। शक्ति कृष्ण शक्ति बिना तारना ही प्रवर्तन, जब तक कृष्ण की शक्ति भले थोड़ा बहुत ज्यादा, सबके पास कृष्ण की शक्ति होती है, लेकिन कोई विशेष कार्य करने के लिए विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है, तो वो शक्ति रूप गोस्वामी के पास। जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने संसार भर के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, जो आंदोलन है, जो उनका संदेश है, उसको प्रसार करने का शक्ति दिया था। अगर आप थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखोगे, अगर आप चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करोगे, रूप गोस्वामी के सिद्धांतों और उनके ग्रंथों को देखोगे और आप परंपरा को देखोगे, तो आप ये अनुमान लगा पाओगे कि प्रभुपाद जी को कितनी बड़ी शक्ति का संचार दिया था। सच ए बिग अपॉर्चुनिटी, और एक्चुअली प्रभुपाद वॉज सेंट बाय कृष्ण, यू नो, इज अ मैन ऑफ गॉड, मैन फ्रॉम वैकुंठ। प्रभुपाद के लिए ऐसा कहा जाता है। सो इसलिए भगवान का ये सेनापति भक्त प्रभुपाद के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शक्ति संचारित भगवान ने रूप गोस्वामी को की थी, और वो शक्ति विशेष रूप से उनके ग्रंथों के माध्यम से आप देख सकते हो कि क्या क्या संदेश उन्होंने स्थापित किया है। रूप गोस्वामी के विषय में जो प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वो है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, ये नंबर चले, जो चैतन्य महाप्रभु के मन की मनोभीष्टम, उनके मन की इच्छा को, उनके विचार को, उनकी हृदय की जो गहराइयों में छुपी हुई जो इच्छा है, उसको जो अच्छी तरह से जो पूर्ण रूप से समझ जाता है बिना बताए, द बेस्ट डिसाइपल, शिष्यों में जो अलग अलग श्रेणी होती है इसमें वो शिष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कि जो शिष्य गुरु के हृदय की इच्छा, मन की इच्छा को बिना बताए समझ जाए। रूप गोस्वामी वॉज दैट काइंड ऑफ डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा समझ जाए, चैतन्य महाप्रभु की मन की इच्छा वो तो स्वयं कृष्ण है, कोई कोई साधारण व्यक्ति तो उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं सकता, उनकी इच्छा को समझ नहीं सकता। देयर आर वेरी फ्यू सिलेक्टेड पर्सनालिटीज कि जो चैतन्य महाप्रभु के इतने इंटीमेट थे कि जो चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छाओं को पूर्ण रूप से समझ जाए। ऑफकोर्स स्वतंत्र ईश्वर चैतन्य महाप्रभु, उनको कोई समझ नहीं सकता सिवाय कि उस पर स्वयं भगवान चैतन्य उन पर कृपा न करे तब तक। और चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा की थी रूप गोस्वामी के ऊपर, और वो उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु के हृदय की सारी इच्छाओं को समझ करके प्रस्थापितम ये न भूतले, और इस भूमि पर इस धरा पर हम सबके उद्धार करने के लिए उनको स्थापित किया। स्वयं रूप कदामयम, ऐसे रूप गोस्वामी कब ददाति पदांत, ददाति स्व पदांत कब, ऐसे रूप गोस्वामी कब उनके चरण कमल का आश्रय मुझे देंगे। दिस इज द प्रेयर्स वी आर मेकिंग रूप गोस्वामी। अगर केवल इतना हमें प्राप्त हो जाए रूप गोस्वामी का अंश, कृपा का एक अंश मात्र प्राप्त हो जाए, That is unlimited mercy. It is इसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूप गोस्वामी के थ्रू परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, और हम आप जो उनके साथ जुड़े हुए हैं परंपरा के माध्यम से, तो इस माध्यम से हम रूप गोस्वामी की कृपा को ग्रहण कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारा कृपा प्राप्त करने का इच्छा, समर्पण और निष्ठा होना चाहिए। रूप गोस्वामी के अनुयायी को रूपानुग कहा जाता है, और इसलिए हम सभी भक्त एक रूप से रूपानुग है। वेल, अभी तक हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे संक्षिप्त में, वो रूप गोस्वामी के विषय में उनके गुणगान थे, वास्तव में बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको रूप गोस्वामी के विषय में थोड़ा उनका महिमा बताया, किंतु अगर आप ये चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों को देखोगे, चैतन्य चरितामृत विशेष करके, तो इसमें आपको पता पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु को कैसे रूप गोस्वामी ने सेवा करके उनको प्रसन्न किया है। हम ट्राई करेंगे कि रूप गोस्वामी का ब्रीफ हिस्ट्री आपके साथ प्रस्तुत करें। रूप गोस्वामी के पिताजी का नाम था कुमार देव, और कर्नाटक के वो एक ब्राह्मण थे, और वहां रहते थे कर्नाटक में, जहां पर ये कांची, शिव कांची, विष्णु कांची जो स्थान है, उस स्थानों के पास वो रहते थे, और वहां पर हमेशा दो प्रकार के ब्राह्मणों के बीच में कई सालों से ऐसा चलता आता है, कई समय से लंबे, कि जो शिव जी के उपासना करने वाले और विष्णु की उपासना करने वाले आपस में एक मत होना असंभव है, तो ये लोग आपस में थोड़ा सा टकराव रहता है उनका, एक विष्णु को भगवान मानता है, एक शिव को भगवान मानता है, और दोनों ही शास्त्र का आधार देते हैं, और विशेष करके शंकर संप्रदाय के लोग भी इसके अंदर वैष्णव के साथ उनका मत भेद होता रहता है, और तो ये जो झगड़ा निरंतर होता रहता था, तो ये कुमार देव जो ब्राह्मण देव, उनको इतना झगड़ा पसंद नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत धनवान भी थे, लेकिन उनको ये सब झगड़ा जो होता था वो पसंद नहीं था, और उनको शांति वो चाहते थे, क्योंकि जनरली वैष्णव का स्वभाव होता है कि झगड़ा करना उनको पसंद नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखोगे तो ये झगड़ा जो है वो कलयुग का लक्षण है, और वैष्णव जो होते हैं वो शांतिप्रिय होते हैं, इसलिए उनको हंस की तुलना दी जाती है। हंस वृत्ति के होते हैं, वो केवल अच्छी चीजों को ले लेते हैं और जो बुरी चीज होती है उसको छूते भी नहीं है। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है कि सबका अच्छे गुणों को देखना, बुरे गुणों को नहीं देखना। तो कुमार देव, उनके मन में हमेशा ये व्यथा रहती थी कि ये स्थान अब मेरे लिए ठीक नहीं है रहने के लिए, यहाँ पर निरंतर अशांति का वातावरण रहता है। तो उन्होंने सोचा कि उस समय 500 साल पहले नवद्वीप जो था, मायापुर नवद्वीप का, वो बहुत ही फेमस था। जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं कि न्यूयॉर्क, जैसे आज का न्यूयॉर्क सबसे फेमस माना जाता है पूरे विश्व में, उस तरह से नवद्वीप पूरे विश्व में फेमस था, स्पेशली एजुकेशन हब था। वहां पर पढ़ाई सबसे उत्तम होती थी और वहां पर लोग बहुत धनी थे और बहुत ही विकसित उस समय के, और सब प्रकार की सुविधा थी और लोग बहुत सुखी थे और शांति थे वहां पर, कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। तो कुमार देव ने ये निर्णय किया कि हम वेस्ट बंगाल में जाकर के रहेंगे शांति से, हमें ये झगड़ा वगैरह पसंद नहीं है, हम शांति से रहना चाहते हैं। तो कुमार देव अपने परिवार के साथ वहां पर चले गए रहने के लिए बंगाल में, और उनके दो बेटे थे, एक का नाम था अमर देव, दूसरे का नाम था संतोष देव। अमर देव और संतोष देव आगे जाकर के रूप सनातन बने थे। तो अमर देव वास्तव में रूप गोस्वामी का नाम है, अमर और संतोष, तो संतोष सनातन गोस्वामी का। तो अमर और संतोष दोनों का शिक्षा बंगाल में हुआ, बहुत अच्छी उच्च प्रकार की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। बचपन से चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते आते थे और उनका स्वाभाविक आकर्षण था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, लेकिन वो कभी देखा नहीं था, उनको महाप्रभु मिले नहीं थे कभी, और उनका केवल सुना था उनके विषय में। और वो इतने बुद्धिशाली थे कि उनके चेहरे में बहुत तेज था और उनकी बुद्धि से, उनके चातुर्य से आसपास के सभी लोग प्रभावित थे। जैसे आजकल कोई बोलता है ना टॉपर्स, आजकल एनीवे ऐसा तो कोई तुलना मिलेगा ही नहीं आपको, जैसे रूप गोस्वामी उस समय में थे, पढ़ाई में सबसे नंबर वन, सब प्रकार से आगे। आसपास के लोग भी जानते थे कि ये लड़का बहुत ज्यादा चतुर है, जैसे हर एक आसपास के गांव के लोग, उनके इलाके के पड़ोसी लोग, सब जगह से ये प्रसिद्ध बन गए थे कि गांव में एक ऐसा लड़का है जिसका नाम है अमर देव, शहर में वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चालाक है, चतुर है, ऐसा बात ऑलरेडी फैला हुआ था। उनका एजुकेशन सब खत्म हुआ, वहां पर थे। उस समय एक घटना बनी थी, वहां का जो नवाब था उसका नाम था नवाब हुसैन शाह, और नवाब बड़े ही क्रूर प्रकृति का था और सब लोग उससे डरते थे, कोई उसको पसंद नहीं करता था, लोग उसके पीछे गालियां देते थे, सोचते थे कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये नवाब जो था उसने एक बार ऐसा सोचा कि मैं मेरे पूर्वजों की स्मृति में कुछ ऐसा स्मारक बनाऊं कि वो हमेशा याद रहे और बाद में भी लोग इसको देखते रहे, तो ऐसा कोई महान कार्य मैं करना चाहता हूं। तो उन्होंने सभा में बताया कि हमें एक ऐसा स्मारक बनाना है, हमारे पूर्वज, हमारे जो दादा परदादा है उन सबकी स्मृति के लिए, तो हमें सबसे अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढ के लाइए कि जो सबसे अच्छा हो। राजा का काम है तो राजा का काम के लिए जो नंबर वन होता है उसको ही लाना पड़ेगा, और ऐसे महान कोई कारीगर है उसको लेके आओ और हम ये बनवाना चाहते हैं, लंबा ऊंचा कोई मीनार बनाना चाहते हैं। सो राजा का जो असिस्टेंट था, नवाब का असिस्टेंट था, वो एक व्यक्ति को जो सबसे उत्तम था उसको लेकर आए शिल्पी, और राजा नवाब के आदेश के अनुसार, नवाब के बताने के अनुसार उन्होंने इसका काम शुरू किया और ये बनता गया पूरा, बहुत अच्छा बन गया पूरा मीनार बड़ा वाला। और करीब 99% कार्य खत्म हो गया था और नवाब देखना चाहते थे कि क्या काम हुआ है उधर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नवाब ने और आर्किटेक्ट को लेकर के असिस्टेंट उनके साथ था, वो सब लोग गए देखने के लिए कैसा काम किया है। तो देखते 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 भी पूरा नहीं हुआ था, उसके ऊपर नाम लिखना बाकी था। धीरे धीरे देखते 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 सबसे ऊपर पहुंच गए और नवाब ने कहा कि बहुत सुंदर, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, तो ये कारीगरी तुम्हारी बहुत पसंद आई। तो वो आर्किटेक्ट थोड़ा ओवरवाइज बन गया, उससे प्रशंसा सहन नहीं हो पाई। उसने कहा कि नवाब ये जो हमने बनाया ये तो हमारा रोज का काम है, ये क्या चीज है, हम तो इससे भी अच्छा बना सकते हैं, हमारे तो बाएं हाथ का खेल है ये सब का, इतना बड़ा मीनार बनाना, ऐसे आर्किटेक्ट इतना अच्छा शिल्प करना, ये वगैरह, दिस इज आवर एवरीडे डिंग। सो बड़ा खुश होकर के छाती तान करके बोलने लगा कि इसमें अपनी अपनी खुद की प्रशंसा करने लगा, मैं तो ये ऐसे ही कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा बना सकता हूँ, ऐसा उसने बोल दिया। तो ये नवाब था, उसने कुछ नहीं बोला, क्रूर तो था ही पहले से, और वो आर्किटेक्ट को पता नहीं था कि किससे बात कर रहा है, ये नवाब से बात कर रहा है और वो भी छत पे जाकर के बोल रहा है कि ऐसा इससे भी ज्यादा अच्छा मैं बना सकता हूं। तो नवाब ने कुछ नहीं किया, उसको उसकी ओर मुड़ करके देखा और ऊपर से सीधा धक्का मार दिया, वो सीधा गया नीचे। हाँ। तुरंत सब लोग देखते रह गए, हाँ खत्म। हाँ। उनका जो असिस्टेंट था वो असिस्टेंट तो देख ही रहा था कि बाप रे बाप, इतना क्रूर, सीधा मार ही डाला उसको, खत्म ही कर डाला, कुछ नहीं, कोई वार्निंग फॉर्निंग कुछ नहीं, सीधा मर्डर, सीधा फांसी, मृत्युदंड। सो और वहां पर काम बाकी था, तो क्यों किया था ऐसा? राजा मनवा वैसा सोच रहा था कि भाई मैं जो चाहता हूं कि मेरे जैसा मीनार या स्मारक दूसरा कोई ना बना सके। ऐसे पहले के समय में ऐसा होता था कि जब ये बड़े बड़े स्मारक बनते थे, जैसे ताजमहल है आदि, तो ये बनते थे तब तक वो कारीगरों को अच्छा सा रखा जाता था, जैसे एक बार ये बन जाता था तो ऐसा दूसरी बार कोई बना ना सके, इसलिए या तो उनके हाथ काट दिए जाते थे या उनको मार दिया जाता था, ताकि ये जनरली क्रूर स्वभाव के लोग ऐसे करते थे कि दे डोंट वॉन्ट इट एनी अदर सच ऐसा अमेजिंग मीनार या स्मारक कभी बने। तो फेंक गए। उसको दूसरा रीजन ये था कि अगर तुम इससे अच्छा बना सकते थे तो ये क्यों ऐसा अच्छा नहीं बना, इसको भी अच्छा बनाना चाहिए ना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुमने अपना पूरा शक्ति इसमें नहीं रखा है, इससे अच्छा बन सकता है ऐसा, हाउ डेयर यू कैन से दिस। तो दिस वॉज द रीजन एंड डाइड, फेंक दिया उसको, मार डाला। तो कुछ समय के बाद नवाब अपने महल में आए और बड़ा क्रोध में था, बड़ा निराश था, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की, कौन जाएगा उसको पूछेगा। और उनका जो मंत्री था, असिस्टेंट था, वो उसने सोचा कि नवाब के पास मैं जाऊं भी तो क्या, कैसे जाऊं, अभी तो इतना क्रोध में उसको मार डाला उधर ही, तो चले गए नवाब के पास। फिर भी कांपते कांपते और कांपते कांपते उन्होंने कहा कि नवाब जी ये आपने इसको ये स्मारक अधूरा, नवाब पूरा सुना ही नहीं। नवाब ने तुरंत चिल्ला कर बोला चले जाओ यहां से, किसी से मुझे बात नहीं करनी, हट जाओ यहां से, छोड़ दो अकेला मुझे। तो वो सुबह उसको डांट दिया था, तो उनका जो मंत्री था वो पूरा दिन महल से निकल गया क्योंकि बहुत डांटा उसको। तो वहां से निकलते निकलते पूरा दिन घूमता 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 सड़कों पर घूम रहा था। उसको लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसको रिजेक्ट ही कर दिया था, बोले तुम यू आर डिसमिस्ड, छोड़ दो। आजकल कुछ तानाशाही लोग होते हैं ना ऐसे, अपना खुद का आदमी होता है, उसको ऐसे ही मार देते बिना किसी रीजन के, है ना। कुछ देशों में ऐसा आज भी होता है कि वहां पर अपना ही आदमी होता है, उसको छोटी सी गलती के लिए उसको खत्म कर दिया जाता है। सो वो आई डोंट वांट टू नेम दैट कंट्री, बट ऐसा न्यूज में आता है, न्यूज मीडिया में आप पढ़ते हो। सो इन दिस वे उसको तो निकाल दिया था, और वो सोचते सोचते अमरदेव पर उसकी नजर पड़ी। अमरदेव उधर से गुजर रहा था और ये सोचा कि इसके विषय में तो मैंने बहुत सुना है, ये व्यक्ति तो बड़ा चतुर है, लड़का है, जवान लड़का है, लेकिन इसको कुछ इसको इसको पूछना देखना पड़ेगा क्या है कुछ। तो वो दुखी तो थे ही ऑलरेडी, तो अमरदेव को कहा सुनिए, हाँ बताइए, आप अमरदेव है ना, हाँ, बोले आप कौन है, बोले मैं राजा का नवाब का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा क्या हो गया, आप क्यों दुखी है? तो उन्होंने कहा कि सारी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ था और सुबह मैं नवाब के पास था और नवाब ने मुझे बहुत डांटा और मुझे निकाल दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो आर्किटेक्ट थोड़ा अभिमान में आ गया, उसने बोल दिया, उसको मार डाला। अब क्या पता है मुझे मार डाल दे, मुझे भी मार सकते हैं, ये तो नवाब तो बड़ा क्रूर है। अब पता नहीं पड़ रहा है मैं क्या करूं, हालांकि वो सहायता ही चाहते थे कि तुम कुछ सजेशन दो, लेकिन वो साफ साफ बताया नहीं क्योंकि उनका उनकी पोस्ट का सवाल था। तो उन्होंने जस्ट बताया तो अमरदेव ने कहा अरे इतनी सी बात है, इतना क्यों चिंतित हो? बोले कि आप सुबह से अभी बाहर ऐसे ही घूमते रहे हो और तुम्हें कुछ इसका तुमने सोचा नहीं क्या करना चाहिए? बोले कुछ सुझ नहीं रहा है, क्या करें? बोले मैं तो अभी उनके पास जाने से भी डर लगता है, नवाब के पास क्या करूं? तो अमरदेव ने कहा इतना सब मत सोचो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, उस एड्रेस पे चले जाओ, वो बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, उसको मेरा नाम दे देना, उसको बोलना कि ये कार्य अधूरा है, उसको पूरा करना है, केवल नाम ही लिखना है ना ऊपर, तो उसको बोलो नाम लिख देगा और फिर उसको लेकर के तुम नवाब के पास जाना और बोल देना काम खत्म हो गया, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो सोचा इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, सॉल्यूशन तो और कोई है नहीं, यही सॉल्यूशन है। तो तुरंत उस पते पर चले गए, एड्रेस पर बताया कि भाई अमरदेव जी ने आपका नाम दिया है और मैं नवाब का व्यक्तिगत असिस्टेंट हूँ और हम चाहते हैं कि तुम आओ वहां पर अपना सेवा दो और इतना काम खत्म कर दो। हाँ क्यों नहीं, चलिए। तो तुरंत उन्होंने वो स्मारक के ऊपर जो नाम था वो पेश कर दिया, समाप्त कर दिया, और वो लेकर के आए अपने साथ कारीगर को नवाब के सामने, और नवाब कहा कि आपका जो स्मारक का काम था वो समाप्त हो गया है, जो बचा हुआ काम था इस कारीगर ने किया है और बहुत अच्छे से किया है, सुंदर रूप से आप खुद जाके देख सकते हैं। सो नवाब बहुत खुश हो गए, वेरी गुड। सो नवाब ने कहा कि हुसैन शाह ने कहा कि वेल ये तो बताओ कि तुम अब चले गए तो और अभी तक आए नहीं, क्या काम है, ऐसा क्या हो गया, इधर क्यों आए क्यों नहीं? बोले आपसे भयभीत था मैं, और मैं पूरा दिन घूमता रहा और साफ साफ बता दिया कि बाद में मैंने एक लड़का है हमारे शहर का, उसका नाम है अमरदेव, उससे बात की और उसने मुझे सुझाव दिया, ये उसी का आदमी है, उसने समाप्त कर दिया काम। तो हुसैन सा सोचने लगा कि ऐसा कौन लड़का है कि जो मेरे मन की बात जान लेता है, बिना एक बार भी मिला भी नहीं है मुझे कभी लाइफ में, फिर भी उसको मेरे मन का जो बात है वो समझ गया वो। और सोचने लगे, वो सोचा कि अगर वो इतना बुद्धिशाली है कि मेरा असिस्टेंट भी जो सोच नहीं सकता, मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको भी वो सिखाएगा, वो सिखा रहा है, इसका अर्थ है कि जरूर ये बहुत काम का आदमी है। और ऐसे भी मैंने उसके विषय में सुना भी है कि ये लड़का बहुत होशियार है। तो नवाब ने सोचा कि पहले कुछ समय पहले, कई साल पहले, एक ज्योतिष आया था मेरे पास, हुसैन शाह ने सोचा। उस ज्योतिष ने कहा था कि जब तुम आगे जाके राजा बनोगे, नवाब बनोगे, उसके कुछ समय के पश्चात दो भाई, दो लड़के तुम्हारे मंत्री के रूप में आएंगे, और जब से वो लोग अब तुम्हारे मंत्री बनेंगे तब से तुम्हारा राजपाट, तुम्हारा राज्य बहुत ही समृद्ध हो जाएगा और बहुत ही फेमस हो जाएगा। तो नवाब ने ये बात को सोचा कि क्या ये दो लड़के वही तो नहीं है? तो फिर पूछा कि अमरदेव और उसके पिताजी का नाम क्या है? तो बोले कुमारदेव। और वो कितने भाई है? बोले दो भाई है। बोले दोनों बुद्धिशाली है? बोले हाँ, दोनों ही बहुत बुद्धिशाली है। तो फिर नवाब ने उस इंसान ने एक काम करो, तो हम अमरदेव के पास जाओ और अमरदेव को कहो कि मैं उनको बुला रहा हूँ मिनिस्ट्री हॉल में, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जाओ उनको बोलो। तो नवाब, वो आदमी गया मैसेंजर अमरदेव के पास। अमरदेव के पास जाकर के कहा कि देखिए, यह है इनविटेशन, आपको बुलाया गया है, उस इंसान स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं नवाब, आप उनके पास आइए। तो उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे कोई ऐसा कुछ, मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, आप उनको मना कर दो, मैं ऐसे नहीं मिलूंगा। तो नवाब के पास आए, नवाब ने कहा कि उनको बोलो कि हम उनको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी एंट्रेंस के, एग्जाम कुछ नहीं होगा, बिना किसी प्रकार का शर्त रखे हुए हम उनको हमारा ये राजनीति में, हमारे मंत्री पद में हम उनको रखना चाहते हैं। तो उनको जाके कहा, बोले मुझे कोई राज में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको बोल दो कि मना कर रहे हैं, हैव नो डिजायर। कोई वापिस गए नवाब, नवाब ने कहा अजीब लड़का है। तो कहा कि उनको बोलो कि मैं उनको प्रधानमंत्री का पोस्ट दूंगा, सबसे ऊपर, सब मंत्रियों के ऊपर डायरेक्ट मेरे अंडर में प्रधानमंत्री, और उनका भाई सनातन उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा। तो इसलिए उनको कहो कि ये दो बड़ी पोस्ट में डायरेक्ट देना चाहता हूं, सीधा, बिना कोई शर्त के, बिना कोई क्वालिफिकेशन, बिना कोई एंट्रेंस, कुछ नहीं। तो जाकर कहा, तो अमरदेव हंसने लगा। अमरदेव ने कहा कि देखिए, मुझे नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनना है और ना ही मेरे भाई को वित्त मंत्री बनना है, इसलिए उनको कह दो कि मुझे उनकी ये ऑफर स्वीकार नहीं है। तो नवाब सोचने पड़ गया कि ये कैसा लड़का है। फिर कहा कि ठीक है, उनको बोलो कि मैं उनको असंख्य धन दूंगा, करोड़ों करोड़ों रुपए दे दूंगा, लेकिन वो हमारा मंत्री पद स्वीकार कर ले, मैं उनको बहुत सुविधा दूंगा, सब प्रकार का आलीशान व्यवस्था, राज्य दे दूंगा उनको, जो चाहिए उनको मैं दे दूंगा, लेकिन उनको बोलो कि वो मेरा मंत्री पद स्वीकार कर ले। और वहां पर जाकर कहा कि देखो नवाब तो कह रहे कि पूरा खजाना लुटा देंगे आपके ऊपर, सब आपको सब सुविधा दे देंगे, अब कि उनका शर्त कि उनका रिक्वेस्ट यही है कि तुम केवल ये मंत्री पद स्वीकार कर लो। तो अमरदेव ने कहा कि ना मुझे मंत्री पद की इच्छा है और ना ही राजा का खजाना चाहिए, ना ही मुझे कोई गांव चाहिए राज्य चाहिए, ना ही मुझे कोई बड़ी कोठी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नवाब को बोल दो कि वो मना कर रहे। तो जाकर के नवाब को कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए, बोलते कुछ भी दे दो आपको नहीं करेंगे ये काम। नवाब ने सोचा कि वाह ऐसा ही अर्जुन भी चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए। बुद्धिमान लोग होते हैं लेकिन बुद्धिमान कभी कभी स्वार्थी भी होते हैं और बुद्धिमान कभी कभी लालची भी हो सकते हैं, लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन इसमें ना लालच है ना कोई स्वार्थ है, वो कुछ नहीं चाहता, इसका अर्थ है कि इज द राइट पर्सन। ऐसा ही व्यक्ति हमें चाहिए जो प्रामाणिक हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही व्यक्ति हमारे काम का है, वो हमारा काम कर सकता है। तो ये मानो ना मानो ये वही दो भाई है जिसका भविष्यवाणी ज्योतिष ने किया था। तो इसलिए राजा ने अंत में ऐसा कहा नवाब ने कि उनको कहो कि उनको कोई प्रतिबंध नहीं है, उनको कोई दबाव नहीं है, उनको ये स्वीकार करना है प्रधानमंत्री पद, ना स्वीकार करे तो भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन वो केवल एक बार हमें मिलने आए, बस मुझे मिलने आए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ बस। तो फिर नवाब ने ऐसा कहा तो अमीर उद्दौला ने कहा ठीक है मैं उनको मिल लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा उनको मिलने के लिए। तो अमरदेव वहां पर आए, अमरदेव संतोष, और कहा कि आपने हमें बुलाया था, बोले हाँ। और नवाब ने बड़े प्यार से बड़ी अच्छी से बड़ी मलाई मार के रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारी इच्छा है कि तुम भले मंत्री पद स्वीकार करो या ना करो, लेकिन केवल हमारे इतने बुद्धिशाली लड़के हो तुम, हमारे ये हमारा जो दरबार है उसमें केवल बैठो बस, और कुछ नहीं, हमें आपकी बड़ी सहायता की आवश्यकता है, आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बड़ा हौसला मिलेगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, इतना अब मना मत करना, ये मेरी विनती है आपसे। ऐसा करके बड़ा उन्होंने विनय किया कि आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए मेरी रिक्वेस्ट को। तो अमरदेव और सनातन संतोष देव उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपका इतना इच्छा है तो हम आपकी बात को मान लेते हैं। तो बोले हमें आपको मेरे बड़ा इच्छा है कि तुम प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री बने, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम राजा हूं और हमारे यहाँ पर इस प्रकार से काम करता है कोई व्यक्ति तो उसका नाम बदल दिया जाता है, तो मैं आप लोग का नाम बदल लूंगा समाज के लिए, तुम्हारा रूप गोस्वामी का नाम होगा दबीर खास और सनातन गोस्वामी सॉरी अमरदेव का नाम होगा दबीर खास और संतोष देव का नाम होगा साकर मलिक, और आप दोनों आज से मेरा पूरा जिम्मेदारी राज्य का तुम संभालोगे। तो इस तरह से उनको एक्सेप्ट किया नवाब को हुसैन शाह को ये दोनों भाइयों ने, और वहां पर रह करके वो लोग राजपाट में उनको सहयोग देने लगे, क्योंकि उनका मन जो था वो निरंतर चैतन्य महाप्रभु के विषय में सोचते रहते थे निरंतर। उनको ये बाद में समाचार भी प्राप्त हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण किया है। सो संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु, ये सब उनको पता पड़ा था। सो So now we will talk next Wednesday and next time हम आपको बताएंगे रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का किस तरह से मिलन हुआ था और किस तरह से रूप गोस्वामी ने अपना मंत्री पद का त्याग किया था। So in short we are trying to give the small history of रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी का संक्षिप्त हिस्ट्री आपके साथ चर्चा करेंगे और फिर सनातन गोस्वामी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। So thank you very much. Hare Krishna. Anyway, so जिन भक्तों को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो और जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज के रूप में या ईमेल भेज सकते हैं। दे कैन आस्क माय ईमेल एड्रेस आल्सो। थैंक यू। हरे कृष्णा।
Gracias.